नमस्कार भारत, तारीख 14 जून दिन रविवार, मैं हूं वंदना। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल करने की रेस में हिलरी क्लिंटन ने की बड़ी रैली, कहा विदेश नीति पर मेरी पकड़। उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को कथित तौर पर जलाकर मारने के मामले ने पकड़ा तूल। वडोदरा में कई मुसलमानों को रहने के लिए नहीं मिल रहे हैं घर।
हंगामा चालू होने लगा कि बोला नहीं, बोला यहाँ पे अगर मुसलमान को मकान दिए जाएंगे तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा रैली निकालेंगे, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते थे।
होंगी खेल की खबरें और अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। पूर्व अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मजबूत करने के लिए न्यूयॉर्क में हजारों समर्थकों को संबोधित कर अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। रूजवेल्ट आइलैंड के एक पार्क में दिए अपने संबोधन को उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ही केंद्रित रखा। ब्रिटानी सरकार के एक शीर्ष सूत्र ने बीबीसी को बताया है कि भगोड़े अमरीकी विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडन की चुराई गई गुप्त फाइलों को पढ़ने में रूस और चीन के कामयाब हो जाने के बाद कई ब्रिटानी जासूसों को अपने ठिकाने बदलने पड़े थे। ब्रिटानी अखबार द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन इन फाइलों के कूट संदेशों को पढ़ने में कामयाब रहे थे। ब्रिटानी सरकार के सूत्र का कहना है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि किसी जासूस को कोई नुकसान पहुंचा हो। एडवर्ड स्नोडन 2 साल पहले अमेरिका के खुफिया जासूसी कार्यक्रम को सार्वजनिक कर चर्चा में आए थे। वे अब रूस में रहते हैं। द संडे टाइम्स के लिए यह खबर लिखने वाले अखबार के राजनीतिक संपादक टिम शिपमैन ने कहा, स्नोडन ने कहा था कि मेरी जानकारी किसी के कब्जे में नहीं है, लेकिन अब हमें प्रधानमंत्री कार्यालय और खुफिया विभाग से पता चला है कि रूस और चीन के पास ये सारी जानकारी है और इसके नतीजे में ब्रिटानी जासूसी को अपने अड्डे बदलने पड़े हैं क्योंकि उनकी जानें खतरे में थीं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार से कहा है कि यदि सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर अफ्रीकी संघ के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। एक बयान में आईसीसी ने कहा है कि बशीर के खिलाफ अभी भी 2 वारंट लंबित हैं। आईसीसी ने दारफूर में किए गए कथित युद्ध अपराधों के लिए बशीर के खिलाफ जाँच की थी। निकारागुआ में हजारों लोगों ने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए बनाई जा रही नहर के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शनकारियों में अधिकतर किसान शामिल थे। उनका कहना है कि इस नहर की वजह से उन्हें अपनी जमीनों से विस्थापित होना पड़ेगा और इसका पर्यावरण पर भी बुरा असर होगा। इस नहर का निर्माण कर रही चीनी फर्म का कहना है कि इस योजना को 5 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। नहर के निर्माण पर करीब $50 अरब खर्च होंगे। 278 किलोमीटर लंबी ये नहर पनामा नहर से लंबी, गहरी और चौड़ी होगी। अजरबैजान में उस बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसके वाहन ने राजधानी बाकू में आयोजित हो रहे पहले एशियाई खेलों में हिस्सा लेने आए ऑस्ट्रियाई तैराकी टीम के 3 सदस्यों को घायल कर दिया था। अधिकारियों का कहना है कि वली अहमदोफ ने यातायात के नियम तोड़े हैं। और मैसेडोनिया की राजधानी कॉपिये में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर देश में अल्बानी मूल के अल्पसंख्यकों के लिए बराबरी के अधिकार मांगे हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर लाइव भी सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ वंदना। कार्यक्रम का आगाज आज करते हैं अमेरिका से। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में बड़ी रैली की है। इसे राष्ट्रपति पद की दौड़ में नामांकन हासिल करने के उनके अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। बराक ओबामा का कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है और अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। यूं तो हिलरी क्लिंटन पहले भी कई छोटे आयोजनों में हिस्सा ले चुकी हैं जिन्हें सॉफ्ट लॉन्च कहा गया है अभियान का, लेकिन न्यूयॉर्क में उनका आयोजन उनकी पहली बड़ी रैली थी और सभी लोगों की नज़रें इस पर टिकी हुई थी। हिलरी क्लिंटन की रैली से जुड़ी जानकारी जुटा कर लाए हैं दिलनवाज पाशा।
डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में आगे चल रही अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कल न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट आइलैंड में हजारों समर्थकों को संबोधित कर अपने चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी। हिलरी के साथ उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बेटी चेल्सी क्लिंटन भी नजर आईं। अपने भाषण में उन्होंने अमेरिका के लिए अपना विजन पेश किया और आम अमेरिकी नागरिकों के लिए काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कामकाजी परिवारों की मदद करने का वादा करते हुए कहा कि जब तक आम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता। हिलरी क्लिंटन के भाषण के केंद्र में अर्थव्यवस्था ही रही, लेकिन उन्होंने अपनी विदेश नीति के अनुभव भी साझा किए। हिलरी ने कहा,
I've stood up to adversaries like Putin and reinforced allies like Israel and
मैंने पुतिन जैसे विरोधियों का सामना किया है और इजराइल जैसे सहयोगियों को मजबूत किया है। जिस दिन हमने बिन लादेन का खात्मा किया था, मैं कंट्रोल रूम में थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि हमें स्मार्ट भी बने रहना है और मजबूत भी। मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए हमें अमरीकी शक्ति के हर तत्व की जरूरत है, जिसमें कुशल कूटनीति, आर्थिक प्रभाव भी शामिल है। और हमें दुनिया भर में जीवन बेहतर बनाने के लिए सिर्फ सरकारों से ही नहीं बल्कि लोगों से भी भागीदारी करनी है।
हिलरी क्लिंटन ने कहा कि यदि वे अगले साल राष्ट्रपति बनती हैं, तो वे सुनिश्चित करेंगी कि अर्थव्यवस्था सिर्फ शीर्ष लोगों के लिए ही नहीं बल्कि आम अमरीकी नागरिकों के लिए भी काम करे। 67 साल की क्लिंटन ने कहा कि समृद्धि सिर्फ CEO और बड़े बैंक अधिकारियों के लिए ही नहीं है और लोकतंत्र सिर्फ अरबपतियों और बड़ी कंपनियों के लिए ही नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए भी है। उन्होंने राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने पर भी जोर दिया।
In order to be strong in the world, we first have to be strong at home. That's why we have to win the fourth fight.
दुनिया में मजबूत बने रहने के लिए पहले हमें अपने देश में मजबूत होना पड़ेगा, इसलिए हमें चौथी लड़ाई जीतनी है, अपनी सरकार में सुधार करने हैं और लोकतंत्र को नई ऊर्जा देनी है, ताकि ये प्रत्येक अमरीकी नागरिक के लिए काम करे। हमें अपनी राजनीतिक प्रक्रिया को भ्रष्ट कर रहे और लोगों की आवाज को दबा रहे गुप्त और रहस्यमयी पैसे के अनंत प्रवाह को भी रोकना होगा।
हिलरी क्लिंटन को उम्मीद है कि वे अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। यदि वे कामयाब रही तो व्हाइट हाउस पर लगातार तीसरी बार डेमोक्रेटिक पार्टी काबिज होगी।
जी, तो हिलरी क्लिंटन ने की बड़ी रैली दिलनवाज। वैसे तो हिलरी क्लिंटन कोई नया नाम नहीं है लोगों के लिए, लेकिन उनके जो उनका सफर रहा है उस पर अगर संक्षिप्त एक छोटी सी नजर दौड़ा सके।
जी, 67 साल की हिलरी क्लिंटन का जन्म 26 अक्टूबर 1947 को अमेरिका के शिकागो में हुआ। उन्होंने येल लॉ स्कूल से 1973 में स्नातक किया और 1975 में बिल क्लिंटन से शादी की, जो बाद में दो बार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, 1993 से और 2000 तक। और इस दौरान अमेरिका की प्रथम महिला बने रहने के दौरान उन्होंने महिला अधिकारों की वकालत की और स्वास्थ्य बीमा बढ़ाने पर भी जोर दिया। वे साल 2000 में न्यूयॉर्क की सीनेटर चुनी गई और फिर 2006 में दोबारा भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल कर सेनेट में पहुंची थी। 2008 में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से वे राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल थीं, लेकिन बराक ओबामा के सामने हार गई थीं। और साल 2009 से 2013 तक अमेरिका की विदेश मंत्री रही और इस दौरान उनके कार्यकाल से दुनिया परिचित रही।
जी बिल्कुल, तो हालांकि लड़ाई काफ़ी लंबी है जो राष्ट्रपति पद की नामांकन हासिल करना उसके बाद, लेकिन अगर वो बनती हैं तो ये अमेरिका के लिए काफ़ी ऐतिहासिक पल होगा।
जी, पहली महिला राष्ट्रपति अमेरिका को मिलेंगी अगर ऐसा होता है तो। इससे पहले जो बराक ओबामा है वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति।
जी, और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हिलरी क्लिंटन समेत 4 लोगों ने अब तक अपने नामों की घोषणा की है कि वो इस रेस में मिलना चाहते हैं, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की ओर से 10 नेता अब तक अपने नामों की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि ये प्रक्रिया काफी लंबी चलेगी, काफी जटिल होती है, अगले साल ही पता चलेगा।
जी
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज। अब रुक करते हैं भारत का। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पत्रकार जोगिंदर सिंह को कथित तौर पर जलाकर मार देने के मामले में कल 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही इस मामले में उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के कल्याण मामलों के मंत्री राममूर्ति सिंह, इंस्पेक्टर श्री प्रकाश राय और 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका डाल CBI से जांच की मांग भी की गई है। लखनऊ से सुने अतुल चंद्रा की रिपोर्ट।
शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र सिंह की मौत का मामला रोज गर्माता जा रहा है। इस मामले में कोतवाल सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें इस पूरे मामले की सीबीआई द्वारा जांच कराए जाने की मांग की गई है। जगेंद्र के परिवार वालों का आरोप है कि 5 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने ही जगेंद्र को जलाकर मार दिया था। जगेंद्र की मौत के सिलसिले में एक वीडियो भी दिखाया जा रहा है जो कथित रूप से उनका डाइंग डिक्लेरेशन माना जा रहा है, लेकिन विवेचना अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि ये मीडिया द्वारा बनाया गया वीडियो है जो उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर बनाया होगा और वे मीडिया से उस वीडियो को मांगेंगे ताकि उसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। विवेचना अधिकारी की हैसियत से राजेश कुमार ने बताया,
देखिए विवेचना चल रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एज सून एज पॉसिबल हो जाए। टेक्निकल एविडेंसेज है, उसका परीक्षण होने में टाइम लग जाएगा और जो एविडेंसेज और कलेक्ट होने हैं तो उसमें टाइम लग जाएगा।
परिवार को शिकायत है कि जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट हुए हैं फोरेंसिक टीम ने किए हैं तो उनको बगैर इन्फॉर्म किए हुए कर लिए गए हैं सब।
फोरेंसिक टीम जो करती है वो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अपने जो है वो करते हुए करती है।
अच्छा, उसमें फैमिली मेंबर्स की परमिशन लेना जरूरी नहीं होता है?
परमिशन तो कभी लेना जरूरी नहीं होता है।
अच्छा,
लेकिन हाँ, दो जो है स्वतंत्र गवाह होते हैं।
जगेंद्र के लड़के राहुल का कहना है कि उनके परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो पैसे लेकर मामले को रफा दफा करें। जिस जिले के पुलिस कर्मी के लोगों के नाम उन्होंने शिकायत की है वहीं की पुलिस जांच करे, इसमें उन्हें न्याय मिलने में संदेह है। मामले में सीबीआई की जांच की मांग करते हुए राहुल कहते हैं,
छानबीन की कुछ दस्तावेज वगैरह उठा के ले गए हैं, कुछ कपड़े उठा के ले गए, कुछ जूते उठा के ले गए, अन्य चीजों को मतलब उठाया है उन्होंने। सामने उठाते तो हमें साथ भरोसा रहता है, हमारे मतलब सामने नहीं उठाया तो हमें तो भरोसा नहीं। सीबीआई मांग कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, बराबर हम पे दबाव बनाया जा रहा है। जब दबाव बनाया जा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम नहीं माने तो हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच गए, तुमने कैसे भी जाओ रुपए ले लें, सरकारी नौकरी ले लो, इस तरह समझौता कर लें।
जब तक जाँच रिपोर्ट नहीं आती तब तक जगेंद्र की मृत्यु रहस्यमय बनी रहेगी। समाजवादी पार्टी भी राममूर्ति सिंह के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टे शाहजहांपुर में उनके राजनैतिक विरोधी देवेंद्र पाल सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया है। देवेंद्र 2012 में ददरौल से विधायक थे जहां से इस बार राममूर्ति चुने गए। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि दोनों के बीच झंझट था। राममूर्ति के बारे में उनका कहना था कि जब जांच रिपोर्ट आएगी तभी कुछ होगा।
पत्रकार को कथित तौर पर जलाने का मामला और रिपोर्ट सुना रहे थे अतुल चंद्रा। उधर फिल्म और टीवी की दुनिया में एक अलग ही जंग छिड़ी हुई है। भारत में पुणे का भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। देश के कई जाने माने एक्टर डायरेक्टर यहां से निकले हैं, लेकिन इन दिनों ये विवादों में हैं। दरअसल महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले अभिनेता गजेंद्र चौहान को संस्था का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिससे यहां के छात्र नाराज हैं। गजेंद्र चौहान भाजपा से जुड़े रहे हैं। एक ओर जहां कुछ लोग इसे मोदी सरकार और एकेडमिशियंस के बीच जंग के रूप में देख रहे हैं तो वहीं छात्र इसे स्वायत्तता के संघर्ष के तौर पर देख रहे हैं। पुणे से देवीदास देशपांडे की रिपोर्ट।
वैसे तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII के छात्रों और प्रबंधन में अक्सर ठनती रहती है, लेकिन इस बार छात्र संस्था के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान की नियुक्ति से नाराज है। नौबत अब यहाँ तक पहुँच गई है कि महाभारत सीरियल में युधिष्ठिर की भूमिका अदा करने वाले गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के विरोध में छात्र हड़ताल पर बैठ गए हैं। दरअसल चौहान दो दशकों से भाजपा से संबंधित है और इसलिए उनकी नियुक्ति को राजनीतिक माना जा रहा है। पिछले दो दिनों से यहाँ कोई क्लास नहीं हुई है, पूरे कैंपस में गो बैक चले जाओ के पोस्टर लगे है और छात्र फैसिज्म का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे है। FTII के छात्र संगठन के अध्यक्ष हरीश शंकर नच्चीमुथु का कहना था कि वे किसी पार्टी का और न ही गजेंद्र चौहान का विरोध कर रहे हैं, बल्कि उनका गुस्सा केवल नियुक्ति से है। उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका विजन हो।
हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहा था, जानू बरुआ का नाम था और राजकुमार हिरानी का नाम था, अभी भी उन लोग किसी का मेंबर्स में है, बट हमारा यही कहना है कि गवर्नमेंट में इतना लोग था उनके सामने, वो डिसीजन क्यों ये गजेंद्र चौहान को मिस्टर वो उसको क्यों चूज किया, व्हेन देयर आर पीपल लाइक दिस, वो गवर्नमेंट का क्या इसमें लाइक क्या उसके बारे में क्या सोच के डिसीजन लिया था। हमारा इतना कल्चरल हेरिटेज भी है हमारा, सो ऐसा इंस्टीट्यूट में एक चीज तो है, कॉम्पिटेंस की भी बात है, लाइक ऑब्वियसली है, बट ऐसा इंस्टीट्यूट इतना सारे प्रॉब्लम से हमारा कल्चर को अंडरस्टैंड करने आदमी चाहिए जो हम बिलीव करते हैं. ऐसा ये वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये आर्ट स्कूल है. लोग जैसे ये इंडस्ट्री में जाके सिर्फ काम करने वाले नहीं है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बनेगा, स्कॉलर्स बनेगा, एकेडमिक्स बनेगा.
साथ ही इन छात्रों का कहना था कि ऐसे किसी व्यक्ति को पद पर बिठाना चाहिए था जिसे सिनेमा की समझ हो. एक छात्र विकास उर्स का कहना था कि हमने संस्था के निदेशक से भी बात की है और उनका कहना है कि वे मंत्रालय से भी इस बारे में बात कर रहे हैं.
इंस्टीट्यूट जो है बेसिकली इज कंसर्न विद फिल्म मेकिंग एंड फिल्म एजुकेशन. तो चेयरमैन जिनको अपॉइंट किया गया है, ही डजंट कम फ्रॉम एनी बैकग्राउंड विद रिलेटेड टू फिल्म एजुकेशन इन एनी वे. तो ऐसे एक पर्सन को जो अपॉइंट किया जाता है तो उसका नतीजा क्या हो सकता है इन एन एकेडमिक स्पेस इज समथिंग दैट वी फील द गवर्नमेंट इज नॉट कंसिडरिंग. और उसी को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ही एक एजिटेशन वाली माहौल बन गई है. तो लोग काफ़ी नाखुश हैं इस अपॉइंटमेंट से, और एक लार्जर कंसर्न भी है कि एफटीआई जैसे स्पेस को ऐसा क्यों ट्रीट किया जा रहा है.
छात्रों का कहना है कि उनका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है. एफटीआईआई में छात्रों की हड़ताल और संघर्ष आम बात है जो कांग्रेस के राज में भी होते थे. 5 वर्षों पूर्व यहां आंदोलन भी हुआ था. इस बार उन्हें आपत्ति इस बात से है कि एक ऐसे व्यक्ति को यहां बिठाया गया है जिसे फिल्म तकनीक की ज्यादा समझ नहीं है.
पुणे से ये थे देवीदास देशपांडे. इससे पहले सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष को लेकर विवाद हुआ था और अब एफटीआईआई को लेकर विवाद. भारत के गुजरात प्रांत के बड़ौदा शहर में हजारों मुसलमानों को उनका घर नहीं दिया जा रहा. आरोप लगाया जा रहा है कि कई हिंदुओं को पड़ोस में मुसलमान परिवारों का रहना गवारा नहीं. बड़ौदा म्यूनिसिपैलिटी की विकास योजना के तहत 8 महीने पहले 2000 मकानों वाली कल्याण नगर बस्ती ध्वस्त कर दी गई थी. यहां रहने वाले मुसलमानों को दूसरी जगह मकान आवंटित किए गए थे, लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण नगर पालिका ने ये आवंटन रद्द कर दिए. बड़ौदा की कल्याण नगर बस्ती से बीबीसी उर्दू के संवाददाता शकील अख्तर की रिपोर्ट.
गुजरात के बड़ौदा शहर के बाहरी सिरे पर कल्याण नगर बस्ती में दूर तक इमारती मलबा फैला हुआ है. 8 महीने पहले तक ये मुसलमानों की एक रहायशी बस्ती थी. यहाँ कम से कम 2000 मकान हुआ करते थे. नगर विकास कार्यक्रम के तहत वडोदरा म्यूनिसिपैलिटी ने ये बस्ती गिरा दी. नियम के अनुसार इन जमीनों की जगह नए मकान अलॉट किए गए, लेकिन स्थानीय हिंदू ये नहीं चाहते कि मुसलमान उनके पड़ोस में रहें. उनके विरोध के कारण अलॉटमेंट रद्द कर दिए गए हैं. कल्याण नगर बस्ती के प्रमुख आरिफ महबूब अली पठान कहते हैं,
जैसे ही मकान हमारे ड्रो किए गए उसके 2 दिन के बाद वहाँ पे एकदम से चारों तरफ से हमारे ऊपर एकदम से हंगामा चालू होने लगा कि बोला नहीं, बोला यहाँ पे अगर मुसलमान को मकान दिए जाएंगे तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा रैली निकालेंगे. ये वो वहाँ पे लोगों ने बंद के भी ऐलान किए मेजोरिटी के हिसाब से उन लोगों ने, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते थे, वो कैंसिल कर दिए गए साहब हमारे. उसके बाद फिर हमने कहा कि सर ठीक है भाई, वो आप कैंसिल कर रहे हो तो कलाली में कम से कम आज की तारीख में 11,000 के ऊपर मकान तैयार पड़े हुए. हमने बोला भाई वहाँ पे हमको दे दिए जाए, तो बोला वहाँ पे जो है जो स्वामीनारायण का मंदिर है वो लोग का ऑब्जेक्शन है. इन्होंने कहा
मकान न मिलने से हजारों मुसलमान महीनों से बेघर हैं. कल्याण नगर बस्ती की फिरोजा बहन कहती हैं कि रोजी रोटी तो एक समस्या है ही, हजारों बच्चों की शिक्षा भी खतरे में पड़ गई है.
सबसे पहले हमारे बच्चों के, हमारे मतलब भाई जितने भी जो हम बस्ती के रहने वाले गरीब भाई जितने हैं सबकी रोजी रोटी गई. यहाँ से कोई मार्केट जाता था, कोई ट्रांसपोर्ट जाता था, कोई कुछ मतलब साग भाजी लाई चला था, अपनी अपनी सब चीज़ें यहाँ पास पड़ती थी, सब लोग कमाते थे. और उसके बाद हमारी सबसे ज़्यादा मुसीबत भाई हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ा. जो बच्चे हमारे नर्सरी से लेके आज 12th तक पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे कॉलेज भी पढ़ रहे थे, सबकी पढ़ाइयों की अपना जो घर खोता है तब सब कुछ खो देता है. आज हमने घर खोया अपना, तो हमारे सारे बच्चों के रिजल्ट सबके खराब आए.
सामाजिक कार्यकर्ता जुबेर गोपलानी इन मुसलमानों को घर दिलाने के लिए कई महीने से प्रयत्न कर रहे हैं. उनका विचार है कि गुजरात सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है.
इन लोगों ने मुसलमानों के साथ और दलितों के साथ फिर वही शुरू किया, छूत अछूत का. मुसलमान यहाँ नहीं रह सकता, दलित यहाँ नहीं रह सकता, अगर वो सवर्ण है, वो पैसे वाला है तो वहाँ रह सकता है. ये अनटचेबिलिटी जो की थी उस वक्त गांधी जी को अनटचेबिलिटी का अनुभव हुआ था, जो ट्रेन में से उनको पिटोरिया से उतार दिया गया था, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई शुरू की थी. हमें ये लगता है कि दोबारा इन मुड़ीवादियों से हमें भी फिर एक नई आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
कल्याण नगर बस्ती के अधिकतर मुस्लिम गरीब वर्ग से हैं। शहर के नामवर बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता जे एस बंदुकवाला का मानना है कि हिंदुओं का विरोध धार्मिक नफरत के साथ साथ आर्थिक असमानता का भी प्रश्न है।
अब ये सारा इलाका है मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, ये सारे इलाके में इन लोगों की ज़रूरत भी है। ये ऑड सिचुएशन है, ये सारी हर एक शहर में होता क्या है कि जो अमीर है उन्हें इनकी ज़रूरत भी है, पर साथ साथ ये नहीं चाहते कि मेरे बाजू में रहे तो दूर रहे।
शहर के महापौर और कमिश्नर अभी तक इस समस्या को हल नहीं कर सके हैं। गुजरात में मानव अधिकार के कार्यकर्ता रोहित प्रजापति का कहना है कि मुसलमानों से नफरत गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक अहम पहलू रही है।
ये जो हमारे जो 50-60 साल का जो राजकारण था कुंभवादी, जिसमें बीजेपी आरएसएस का बड़ा रोल है, दूसरे फंडामेंटलिस्ट फोर्स भी है जो ये जिसमें मुस्लिम फंडामेंटल फोर्सेस भी है जो भी इन्वॉल्व है, कि चाहते हैं कि ये पनपता रहे, तो ये जो पोलराइजेशन हुआ है इसकी वजह से आवाज़ उठती है हिंदू की तरफ से कि हमको यहाँ मुसलमान नहीं चाहिए। तो मैं पूरा ब्लेम ये नहीं करूँगा कि ये सब हिंदुओं का ही मतलब मुद्दा है, उनका हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने ये परिस्थिति पैदा की है कि लोग बोले कि हमको मुसलमान यहाँ नहीं चाहिए, और ये कम्युनलिज्म बहुत बड़े पैमाने पे आम हिंदू में पहुँच चुका है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत गुजरात से की थी। उनके 15 वर्ष के सत्ताकाल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बहुत गहरी हुई थी। शकील अख्तर, BBC, वडोदरा।
गुजरात की धार्मिक जटिलताओं को टटोलती शकील अख्तर की रिपोर्ट। और अब बारी है अखबारों की समीक्षा की। सुबह के अखबार आ चुके हैं और दिलनवाज आप काफी देर से नजर दौड़ा रहे हैं अखबारों पर, तो बताएं क्या कहती हैं सुर्खियां आज की।
जी, आज के अखबारों के पहले पन्ने पर कल पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने जो कश्मीर को लेकर बयान दिया उससे जुड़ी खबरें हैं। दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है आतंकवाद पर शरीफ के नापाक बोल, और ये खबर लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। कल शाम दिल्ली में तेज हवाएं चली थी और उसके बाद बारिश आई थी, मौसम खुशनुमा हो गया,
अचानक ऐसा लगा कि गर्मी झूमंतर हो गई।
जी बिल्कुल, कुछ घंटों के लिए। और उसी से जुड़ी खबरें लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं, तस्वीरें प्रकाशित की गई हैं
एकदम रंग बिरंगी, वो छतरी लेके हवा
जी। अमर उजाला में इंडिया गेट के बाहर मस्ती करता हुआ युवाओं का एक समूह है, तो दैनिक जागरण ने इंडिया गेट पर ही एक पेड़ के गिरने की तस्वीर प्रकाशित की है और लिखा है मौसम ने बदली करवट। अमर उजाला लिखता है बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, हालांकि ये पता नहीं कि ये जो अच्छे मौसम का दौर है दिल्ली में कब तक चलेगा, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जिक्र अब एक इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर का, जिसके मुताबिक छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला जो काफ़ी पीछे रहता था, वहाँ पर पिछले 15 महीनों के दौरान महिलाओं ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं स्वयं सेवा समूह बनाकर, और इसकी वजह से इनकी जो कहानी है कामयाबी की उसको वहाँ पाठ्य पुस्तकों में भी जगह दी गई है, तो ये महिलाओं का हौसला बढ़ाने वाली खबर है। द हिंदू की एक पहले पन्ने पर प्रकाशित खबर है जिसके मुताबिक कश्मीर में जो टैक्सी वाले हैं वो परेशान हैं सेना से, सेना वहाँ चरमपंथियों के खिलाफ अभियान चला रही है और उनकी टैक्सियाँ ले जाती है, उन बदले में उनको कुछ पैसे भी नहीं
लगाए गए।
ये आरोप हैं, ये पहले पन्ने पर खबर है। और इसका जो पहलू है टैक्सी वालों की जो चिंता है वो ये है कि पैसे नहीं मिलते बात नहीं है, गाड़ियाँ उनकी होती हैं, हो सकता है चरमपंथी उनकी गाड़ियों को पहचान लें और फिर बदले में उन्हें निशाना बनाएं।
जी,
और अब जिक्र दैनिक भास्कर की एक खबर का जिसके मुताबिक एक पायलट की ट्रेनिंग पर 1 करोड़ का लगभग खर्च आता है, लेकिन अगर बात की जाए रोजगार की तो देश में 7,000 पायलट बेरोजगार हुए हैं, यानी इतना भारी भरकम खर्च ट्रेनिंग पर करने के बाद भी नौकरियां उस लिहाज से नहीं मिलती हैं। और अब बात नौकरियों की चल रही है तो दैनिक जागरण की एक और खबर का जिक्र जिसके मुताबिक दिल्ली के स्कूलों के सिर्फ 15% छात्रों को ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों पर यह सर्वे कराया था और जिसके नतीजे में ये बात कही गई है कि सिर्फ 15% छात्र ही अच्छी नौकरी पाते हैं।
जी, एक और दिलचस्प खबर जो मेरी नज़र जा रही है अखबार आपके पास है कि कैसे जो छात्र हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे जो ऐप्स आए हैं टैक्सी ऐप्स उनके ज़रिए वो सुबह पढ़ते हैं और शाम को ऊबर और ओला जो है इनके ज़रिए शाम को गाड़ी चलाते हैं और कुछ पैसे कमा लेते हैं।
जी, ये उद्यमिता का नया दौर जो है भारतीय छात्रों में शुरू हुआ है, ये खबर पहले पन्ने पर थी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब है खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और बांग्लादेश के बीच फतुल्ला में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच पर कल चौथे दिन भी बारिश का साया छाया रहा और जो थोड़ा बहुत खेल हुआ उसके बाद अब आज पांचवें दिन इसका नतीजा आना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। पहले तो बादल बरसना बंद करें और उसके बाद भारतीय गेंदबाज 17 विकेट लेने का दमखम दिखाएं। कल भारत के कप्तान विराट कोहली ने परसों के स्कोर 6 विकेट पर 462 रन पर ही भारत की पहली पारी समाप्त घोषित कर दी और कल जब खेल समाप्त हुआ वो भी बारिश के कारण तब बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट खोकर 111 रन था। स्टंप के समय सलामी बल्लेबाज इमरुल कैस 59 और शाकिब अल हसन बिना किसी रन के नाबाद थे। भारत के ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने 30 रन देकर 2 और हरभजन सिंह ने 23 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। मोमिनुल हक ने हरभजन सिंह की गेंद पर गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाया और वो उमेश यादव को कैच दे बैठे, उन्होंने 30 रन बनाए। कल का खेल समाप्त होने के बाद भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने मौसम और टीम की रणनीति तथा अपने खेल की आक्रामकता को लेकर कहा,
अगर 5 दिन का गेम होता तो बिल्कुल जो हमारा प्लान था कि जीतने के लिए जाना उस पर पूरा दम लगाते और वेदर पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसका कुछ नहीं कर सकते। और जो मेरी गेम एग्रेसिव रहती है और जब मुझे मौका मिलता है कि मैं खेल सकता हूँ एग्रेसिवली तो मैं ज़रूर खेलता हूँ और मैं इंजॉय करता हूँ उस गेम को, वैसे खेलना मुझे अच्छा लगता है।
वैसे बांग्लादेश की तमन्ना भी यही थी कि वो किसी भी तरह इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करा ले, अब बारिश की वजह से ही सही। उधर टेनिस के कोर्ट पर स्टुटगार्ट ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में उन्होंने कल चौथी वरीयता हासिल फ्रांस के गेल मॉनफिल्स को 6-3 6-4 से मात दी। फाइनल में अब उनका सामना सर्बिया के विक्टर ट्रॉके से होगा जिन्होंने एक अन्य सेमीफाइनल में मारिन चिलिच को 6-3 6-7 7-6 से मात दी। वहीं विश्व हॉकी लीग सेमीफाइनल के मुकाबले खेलने से पहले भारत ने एक अभ्यास मैच में फ्रांस को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल खेल के 23वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर रुपिंदर पाल सिंह ने किया।
खेल की खबरें जो सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त अपने ही जो उनका चिर परिचित अंदाज रहता है। और चूंकि खेल की खबरों की ही बात हुई है तो एक खबर जो कल आई थी पाकिस्तान से, पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी अब इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर अपनी T20 प्रीमियर लीग शुरू करना चाहता है। ये बल्कि एक तरह से फैसला हुआ है कल जो PCB की बैठक हुई।
लेकिन ये T20 लीग जो है पाकिस्तान में नहीं खेली जाएगी, ये संयुक्त अरब अमीरात में खेली जाएगी। बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने एक बयान जारी कर कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए इसे संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा कारण सुरक्षा का मुद्दा भी है पाकिस्तान में, लेकर
हमला जिस तरह से हुए
जी 2009 में श्रीलंका की टीम पर हमला हुआ था और उसके बाद से पाकिस्तान में किसी भी विदेशी टीम ने दौरा नहीं किया है। पिछले महीने यदि जिम्बाब्वे की टीम के दौरे को हटा दिया जाए तो कोई
भी लेके भी काफी वाद विवाद था कि जाए या ना जाए।
जी, और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम ने पैसे की समस्या से जूझ रहे जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों को काफी अच्छा पाकिस्तानी बोर्ड ने पैसा दिया था तब वो खेलने आए। बहरहाल अगर पाकिस्तान अपनी प्रीमियर लीग शुरू करेगा तो इससे कुछ होना हो पाकिस्तान में क्रिकेट को जरूर बढ़ावा मिलेगा।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब विश्व समाचार दिलमाश पाशा से।
हिलेरी क्लिंटन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। भगोड़े अमरीकी विसिल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन की चुराई गई गुप्त जानकारियों को रूस और चीन पढ़ने में सक्षम रहे हैं और इसके कारण ब्रितानी जासूसों को अपने ठिकाने बदलने पड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार से कहा है कि यदि सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर अफ्रीकी संघ के सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। निकारागुआ में हजारों लोगों ने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए बनाई जा रही नहर के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। अजरबैजान में उस बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसकी बस से हादसे का शिकार होकर 3 ऑस्ट्रेलियाई ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी घायल हो गए थे। मैसेडोनिया की राजधानी स्कोपिये में हजारों लोगों ने प्रदर्शन कर देश में अल्बानी मूल के अल्पसंख्यकों के लिए बराबरी के अधिकार मांगे हैं। बीबीसी समाचार।
और इसके साथ ही नमस्कार भारत में विदा लेने का समय आ चुका है। आज स्टूडियो संभाला था अजीत सारथी ने। bbchindi.com दिन भर आपके साथ है। मुझे वंदना को दीजिए अनुमति।